ओम शांति। हम कार्मिक सेटलमेंट या कार्मिक अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, तो पिछली बार हमने बात किया था कि भोग से कर्म चुक्तु कैसे हो। उसके हमने दो तरीके बताए थे, रेट्रीब्यूशन और रिपरकशन। रेट्रीब्यूशन में वेदना के साथ कर्म चुक्तु होते हैं और रिपरकशन में वापसी होती है, पर वापसी के साथ साथ कई बार वो कर्म हमें किसी चक्र में फंसा देते हैं और हमारा टाइम यूज कर लेते हैं, जिस वजह से हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ नहीं पाते। भोग से ये दो तरीकों से कर्म चुक्त होते हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में ये भी कहा है कि कर्म योग से चुक्त करना ये बेहतर तरीका है। तो आइए जानते हैं कि योग से कर्म कैसे चुक्त होते हैं। योग से कर्म चुक्त करने के भी वैसे ही दो तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है, उसका नाम है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के जो कर्म होते हैं, रिडीम करना माना क्या हो? मैं एक उदाहरण देती हूँ। समझिए, मैंने किसी मेरे मित्र से या कोई बिजनेस पार्टनर से मैंने 4,000 रुपये उधार लिए हैं या 4,00,000 रुपये उधार लिए हैं, और मेरी ऐसी बिजनेस चलती है कि मैं वो उधार वापस दे नहीं पाती हूँ, तो मेरा रिश्ता अच्छा होने की वजह से वो पार्टनर या क्रेडिटर मुझे कहता है, अच्छा आप एक काम करो, आप 4,00,000 में से 2,50,000 रुपये वापस दे दो, मैं 1,50,000 की आपको माफी दे देता हूँ। तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडेम्पशन, जिसमें थोड़े बहुत आपको वापस देने पड़ते हैं और थोड़े बहुत की माफी हो जाती है। तो जब हम योग से कर्म चुक्तु करते हैं तो शिव बाबा भी हमारे टीचर या सद्गुरु बनकर वो हमें रिडेम्पशन का चांस देते हैं। वो कैसे? समझिए, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था वैद्य का, कि मैंने कोई विकर्मी संस्कार यूज करके डॉक्टर की ट्रीटमेंट दी है लोगों को, और संस्कार अंदर वही है, विकर्मी संस्कार है, पर इस बार बाबा मुझे क्या चांस देते हैं? बाबा कहते हैं, ठीक है, आप ये जो ट्रीटमेंट के संस्कार है वह आप मेरी सेवा में यूज करो, तो मैं आपके जो थोड़े बहुत पाप है उसको रिडीम कर दूंगा, माना माफी दे दूंगा। तो इसीलिए बाबा क्या करते हैं, जैसे ही हम स्पिरिचुअल बचपन में आते हैं, हमने देखा है कि बाबा कोई न कोई हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक सेवा का कोई न कोई साधन हमें सौंप देते हैं। जैसे हमें कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी दे देते हैं, या कहीं खाना पकाने की ड्यूटी दे देते हैं, या कोई भी, इवन लौकिक रूप में भी कोई ना कोई हमें एक ड्यूटी, बाबा एक सेवा हमें सौंप देते हैं। ये बाबा ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं, हम नहीं जानते कि हमने कौन से संस्कार को यूज करके बहुत ज्यादा विकर्म किए हैं। यदि हमारे पास बहुत कटु शब्द बोलने के संस्कार रहे हुए हो, तो बाबा कहते हैं कि अच्छा, अभी इसी संस्कार को सही तरीके से मेरे सेवा में यूज करो और ज्ञान को सही तरीके से आप लोगों को दो, ताकि आपने अगर ये संस्कार विकर्मी रूप में यूज किया है तो इसी से सेवा करके मैं आपको रिडीम कर दूं, माना आपको माफी दे दूं। तो जब हम वही संस्कार सेवा में यूज करते हैं तो बाबा ऑटोमेटिकली हमें माफी दे देते हैं इसकी, और इसके लिए हमें वो संस्कार सेवा में बार बार हमें यूज करना चाहिए। तो रिडेम्पशन का जो ये तरीका है, ये बहुत ही ऐसे पार्टनरशिप का तरीका है, जिसमें आप और बाबा साथ साथ उस विकर्मी संस्कार को सेवा में या किसी के अच्छे के लिए या भले के लिए यूज करके, जो पूर्व के जो पाप किए हैं उनको आप ट्रांसफॉर्म करते हुए चलते हो। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आप अपने संस्कार को यूज करते हुए धारणाओं से ट्रांसफॉर्म करते चलते हो, तो ऑटोमेटिकली रिडेम्पशन होते होते इसी संस्कार से बाद में आपका भाग्य भी बनने लगता है। तो बचपन से बाबा आपको कोई ना कोई एक सेवा सौंप कर बाबा आपके रिडेम्पशन से कर्म चुक्त करवाते हैं। इसमें संस्कारों की बात होती है, विकर्मी संस्कार जो यूज होते हैं उसको सेवा में लगाने से वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, और बाबा आपको इसके बदले में, क्योंकि ये बाबा के साथ भी हमारा एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप बाबा की सेवा में वो संस्कार यूज करें, इसलिए आपके बहुत सारे 63 जन्मों के पापों में से बाबा बहुत सारे पाप माफ कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे लिए ये संस्कार यूज करें तो मैं आपके ये पापों को माफ कर रहा हूं। तो इसीलिए ये कार्मिक अकाउंटिंग हमको अभी शिव बाबा के पास ट्रांसफर करना है, ताकि हम रिडेम्पशन के थ्रू हमारे बहुत सारे पापों को छुड़वाएं, या उन्हें सेवा के रूप में देकर हम उसे ट्रांसफर करें। तो सेवा का रूप कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लास ही कराना है या खाना ही बनाना है या मधुबन में ही सेवा करनी है, नहीं। जैसे भी जितने बाबा के 33 कोटि बच्चे हैं, उनके जितने भी तरह के संस्कार हैं, उतने तरीके से बाबा उनसे सेवा लेगा जैसे जैसे वो ज्ञान में आते जाएंगे। इसीलिए रिडेम्पशन के जब भी संस्कार चुकतु करने, रिडेम्पशन के कर्म, तो शुरू से ही सेवा का एक कोई ना कोई तरीका पकड़ ले। वो बाबा ही आपके बुद्धि को टच करते हैं या कोई निमित्त आपको देते हैं सेवा, और फिर उस सेवा को सच्चे मन से और खुशी से करें, क्योंकि ऑलरेडी हम उस संस्कार से पाप करके आ चुके हैं। अभी रो के या फिर ऐसे फोर्स के फीलिंग से सेवा करेंगे तो फिर रिडेम्पशन के कर्म चुकतु नहीं होंगे। इसीलिए एक सच्चे मन से और खुशी से और प्यार से सेवा करें, जो भी सेवा आपके सामने आए, और आपके संस्कारों अनुसार सेवा करते करते बाबा आपके पापों को भी रिडीम करेंगे, और आगे के लिए जब आपका ये जो अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा, पाप का खाता खत्म हो जाएगा, तो बाबा आपके पुण्य का या भाग्य का खाता भी उसी सेवा के संस्कार के थ्रू ओपन करेंगे। तो ये हुआ रिडेम्पशन से कर्म चुक्त करने का। नेक्स्ट, जो इसी प्रक्रिया में थोड़ा और इवॉल्व्ड या डेवलप्ड तरीका है, जिसे ही बाबा हमेशा प्रिफर करते हैं, और वो है रियलाइजेशन से कर्म चुक्त करना। तो हम राज्यों की पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेल्फ के मास्टर बने या स्व के राजा बने, स्वराज्य अधिकारी बने। तो इसमें स्वराज्य अधिकारी जब हम बनते हैं तो हमें क्लियरली हमारे संस्कार दिखाई देते हैं कि ये हमारे संस्कार दूसरों को दुख देते हैं, या ये संस्कार सुख देते हैं, या ये संस्कार टाइम वेस्ट करते हैं, या ये संस्कार हमारे ईगो को दर्शाते हैं, या ये संस्कार बहुत ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में बहुत सारे विकर्म अंदर ले आते हैं। तो ऐसे क्लियरली जैसे एक आईना आपके सामने होता है, तो ये रियलाइजेशन से आपको संस्कार दिखते हैं, और आप अपने मन से कॉन्शियसली चूज करते हैं कि मैं इस संस्कार को एक्टिवेट करूं या नहीं करूं। तो इससे भी आपके जो कर्म जो है वो चुक्त हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। समझे, जैसे मैंने वही डॉक्टर का उदाहरण दिया था, तो अभी आप समझ गए कि आपके जो डॉक्टर बनकर आपने जो भी कर्म किए थे, तो भोग के कुछ कर्म चुक्त कर दिए आपने, और फिर अभी बाबा ने कुछ कर्मों की माफी दे दी आपको सेवा सौंप कर। फिर आगे चलकर जैसे जैसे आप अपने आप का अवलोकन करते हैं, तो आपको ये दिखता है कि ये संस्कार विकर्मी क्यों बना, क्योंकि शायद मैं इतने पेशेंट्स हैंडल कर रही थी, या इतना जल्दी जल्दी मुझे काम करना था, तो कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसे ट्रीटमेंट दे रही हूँ, या मेरे अंदर मुझे हमेशा जैसे लोगों पे ज्यादा दया आती थी और मैंने फ्री में ट्रीटमेंट दिया, तो मेरे अंदर ये वृत्ति रहेगी कि पेशेंस पैसे देते नहीं हैं, या ऐसी कोई भी बात हो, तो जब हम अपने संस्कारों का अवलोकन करते हैं, हमें समझ में आती कि हमारी वृत्ति क्यों फॉर्म हुई थी और हम विकर्म क्यों कर रहे थे, तो हम अपने बुद्धि से अपने आप को कहते हैं कि अभी से मैं इस संस्कार को ऐसे यूज नहीं करूंगा, अभी से मैं जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं दूंगी, या मैं समझ के पेशेंट के रोल को समझ के फिर उसको प्यार से ट्रीटमेंट दूंगी। तो ये जब ही रियलाइजेशन से आप आपके कर्मों को चेंज करते हैं तो संस्कार भी चेंज होता है और साथ साथ जो पुराने कर्म है वो फास्टर चुप्त हो जाते और योग से चुप्त हो जाते और आने वाले नए विकर्म कोई बनते नहीं। और धीरे धीरे आप रियलाइजेशन से कर्म चुप्तु करते करते या संस्कारों को परिवर्तित करते करते आप अकर्म की स्टेज पे पहुंच जाते, जहां ही हम सबको पहुंचना है। समझिए, मैं बहुत सालों से लौकिक लाइफ में रह रही हूं और 20 साल मुझे किसी आत्मा को सेवा देकर उनको कर्म लौटाना पड़ा। और ये 20 साल की प्रक्रिया में जैसे मैं उन्हें रोज खिला पिला, कोई समझे मेरी माँ हो या सास हो, ये खिला पिला नहला के जो भी मैं कर्म दे रही हूँ, इसी प्रोसेस में यदि मुझे एक दिन रियलाइजेशन हो जाए कि इस आत्मा को मैं शांति से और अच्छे से कर्म दूंगी तो ये आत्मा जल्दी स्वस्थ हो जाएगी या खुश हो जाएगी या अपने कर्म लेके आगे अपने जर्नी पे निकल जाएगी, तो जैसे ही मेरे में रियलाइजेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली ड्रामा भी और बाबा भी मुझे सहयोग देंगे और मुझे उस कर्म से जल्दी ही फ्रीडम दे देंगे और फिर मैं अकर्म की स्टेज पे पहुंच सकती हूँ। अकर्म की स्टेज वो होती है जहां मुझे कोई भी अंदर वृत्ति या फीलिंग नहीं होती है। तो हम हमारे सीनियर्स को या दादियों को देखते हैं, वो भी ऐसे कर्म चुप्त करते करते आज वो अकर्म की स्टेज में, कर्म वो भी कर रहे हैं हमारी तरह, पर उनके अंदर कोई भी न लेन देन की वृत्ति है न मांग की फीलिंग, कोई भी फीलिंग नहीं है, बस बाबा और सेवा, बस ये दो ही फीलिंग्स है। तो हमको भी वही अकर्म की स्टेज पे पहुंचना है, उसके पहले हमें योग से इन दो तरीकों से कर्मों को चुप्त करना है और वो है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन माना सेवा में कर्म देकर पूर्व कर्मों की माफी ले लेनी है और उसी के द्वारा आगे चल के भाग्य भी बनाना है। और रियलाइजेशन के कर्म जिसमें हम अपने जो संस्कार है उनको परिवर्तित करके साथ में योग और ज्ञान को समझते हुए शिव बाबा के साथ में विकर्मों को छोड़कर अपने संस्कारों को शुद्ध तरीके से और बेहतर तरीके से यूज करके सुकर्म क्रिएट करते हैं। तो ये भी कर्म चुप्तु करने के या कार्मिक अकाउंटिंग के ही दो तरीके हैं। इनको जानने के बाद हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि बहुत करके हमारे सारे कर्म योग से ही चुप्त हो, न कि भोग के चुप्त हो। और इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि कर्म करते वक्त हमेशा बैलेंस रखें। ऐसे नहीं है कि आप बहुत सेवा के फील्ड में चले जाओ तो आप शरीर का या स्व का ध्यान नहीं रखें, या फिर आप स्व का इतना ध्यान रखें कि आप कोई सेवा कर ही नहीं पाओ। तो दोनों भी तरीके से हमको अपने संस्कारों को यूज नहीं करना है, क्योंकि योग से जब हम कर्म करते हैं योग के अम्ब्रेला के नीचे, तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। यदि हमने बहुत ज्यादा सेवा के चक्र में शरीर को घिसा दिया है तो फिर से हम जो मैंने पहले कहा था रिपरकशन के चक्र में फंस जाएंगे, जहां आपकी और आपके शरीर की कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जिस भी प्रति के कर्म के प्रति हम इम्बैलेंस या आसुरी वृत्ति से हम कर्म करते हैं, वो चीज हमें फिर से आके कोई ना कोई भोग का कर्म भी वापस दे सकती है। फिर हमें ये फीलिंग आती कि इतना हमने बाबा के यहाँ सेवा और योग दिया, फिर आज ये शरीर इतना तकलीफ क्यों दे रहा है। तो पास्ट के जो भोग के शरीर के कर्म है उसे चुप्तू करना है, बट उसके साथ साथ अपने कर्मों में सेवा में सब में स्व और सेवा का बैलेंस रखते हुए कर्म करना है, क्योंकि यही एक शरीर है जिसके साथ हमको बाबा के साथ अंत तक रहना है। तो उसे भी एक मंदिर के रूप में रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, हमारे सहकर्मियों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है और हमारे संस्कारों को भी शुद्ध वे में यूज करना है। तो ये थी आज की बात कि योग से कर्म चुकतू कैसे हो और कर्म में हम अकाउंटिंग करते वक्त हम बैलेंस कैसे रखें, क्योंकि हर अकाउंटेंसी का ये प्रिंसिपल होता है कि आप साल के एंड में उस चीज को बैलेंस करते हैं, खर्चे को और जो पाया है उसको। तो ये कर्म की प्रक्रिया भी ऐसी है जहां आपको ये बैलेंस रखना है कि आप खर्च कितना कर रहे और पा क्या रहे हैं, और अपने संस्कारों को सही यूज करते हुए हमको अकर्म की